अब ये फ्रिज में जो रखा हुआ सामान वो खा ले, बोले अब गर्म में फिर से गैस करूं और वो सब मेहनत, अब मुझे तो नींद आ रही, तू यही खा ले जैसे, ऐसा करेगी क्या माँ? उसको बड़े प्रेम से जैसा बने वैसे अच्छी से अच्छी चीज खिलाएगी, क्योंकि स्नेह है। और भक्त वो होता है जिसको देवशास्त्र गुरु से स्नेह हो। अगर गुणों का अनुराग न हो तो भक्ति कैसी? इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय जो वस्तु आप चढ़ाने जा रहे हैं, उस वस्तु को भी एक नजर देख लो, क्या चढ़ा रहे हो और चढ़ाते समय क्या बोल रहे हैं, ये भी और देख लो। जड़दीप विनश्वर को अब तक समझा था मैंने उजियार, जड़ ये प्रशंसावाची शब्द है, विनश्वर ये प्रशंसावाची शब्द है। झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा, ये दीपक के गुणों का वर्णन है। किसी पूजा की हम आलोचना नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी पंक्तियां किसी अपेक्षा से तो उचित है, लेकिन जब अपन जिनेंद्र भगवान की आराधना करने आते हैं तब अपने अंदर भक्ति की प्रमुखता होनी चाहिए। उस समय अपना दिमाग मत चला, उस समय भाव विभोर होना अनिवार्य है। उस समय बुद्धिमान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान आप अपने घर पर बने रहो, कोई निषेध नहीं है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के चरणों में भाव विभोर होने की अपेक्षा है। इसलिए भगवान की अर्चना करते समय जो चीज आप चढ़ाने जा रहे हैं, उस चीज के अवगुणों का वहां पर चित्रण न करते हुए आप ये कहो कि शुद्ध घी का एक ऐसा दीपक है जिससे उजाला फैलता है, लेकिन मेरी आत्मा में भी मैं उजाला चाहता हूं। आपकी आत्मा में तो केवल ज्ञान का उजाला फैल चुका है, मैं ये दीपक समर्पित करके, भक्त और भगवान के बीच की कड़ी का नाम भक्ति है। भक्त और भगवान के बीच जो दूरी है, उस दूरी को मिटाने की प्रक्रिया ही भक्ति है। मेरे अंदर अंधेरा है, आपके अंदर उजाला है, और ये जो बीच में दीपक की कड़ी बनाई है मैंने, मोहांधकार विनाशनाय दीपन निर्वपामीति स्वाहा। इस प्रकार ये जो भावनाएं हैं, बहुत सिंपल इसका सिद्धांत है भक्ति का, क्या भगवान के गुण देखे अपने को और अपने दोष, अपने गुणों को आप सामायिक में देखिए और भगवान के चरणों में आकर देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में अपनी कमी और उनकी श्रेष्ठता दृष्टि में आ जाए। और ये निश्चित है कि जब तक आप भगवान को सब कुछ नहीं मानेंगे और अपने आप को कुछ नहीं नहीं मानेंगे, तब तक वो भक्ति प्रवाहित नहीं हो सकती। भक्ति कैसे प्रवाहित होती है? झुकाव होता है, तब आप झुकेंगे तब भक्ति प्रकट होगी। जब तक गुणों के प्रति झुकाव नहीं होगा, फिर शरीर से झुकना तो बाद में होता है, पहले तो मन झुक जाता है भगवान के प्रति, और फिर देखिए कितना आनंद आता है। तो वो भक्ति रस जब तक नहीं आता अंदर, आप यहां पर सब कुछ करके चले जाते हैं और फिर बाहर निकल करके वही अहंकार की बात, वही कषाय की दुनिया, कैसे संभव है? कोई भी धार्मिक क्रिया मैंने सही की है कि नहीं की है, इसकी एक पहचान सुन लो। अगर आपने माला भी सही फेरी होगी, अगर आपने पूजा सही की होगी, अगर आपने स्वाध्याय सही किया होगा, अगर आपने गुरु को आहार दान सही भक्ति भाव से दिया होगा, या कोई भी क्रिया एक्स वाई जेड कोई भी धार्मिक क्रिया आपने सही की होगी, तो आपको अंतर मुहूर्त कर के लिए विकथा करने की इच्छा नहीं होगी, कषाय करने की इच्छा नहीं होगी, कोई दूसरे विषय पर बातचीत करने तक की इच्छा नहीं होगी। जैसे कोई बहुत अच्छा प्रवचन सुन करके जा रहा हो और बाहर जाकर के दुकानदारी की या और किसी बात की परिस्थिति बन जाए तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग से नरक आ गया, लगता है ना। तो ये वेदना हो तब समझना चाहिए कि मेरी धार्मिक क्रिया आज सही हुई है, और अगर यहां सब कुछ करने के बाद भी वहां जाकर के तुरंत मन लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि यहां मन नहीं लगा था। वो तो एक निश्चित बात है, अगर यहां मन लगेगा तो वहां से हटेगा, अगर वहां मन लगा है मतलब यहां से हट गया। और फिर इसमें बीच में अंतर मुहूर्त तो लग ही जाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप यहां बहुत अच्छे से मन लगाकर तत्काल विषय कषायों में डूब जाओ, कैसे हो सकता है। एकदम पेड़ा खाने के बाद करेला कैसा लगता है विचार करो। तो वो चीज आनी चाहिए। तो उन्हीं भावनाओं का चित्रण करते हुए यहां पर ही अनुप्रेक्षा, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ अपने अंदर भावनाओं को जगाने के लिए है। तो कितनी बातें इसमें आती है कि मेघ धनुष के समान अथवा बिजली के समान इंद्रियों के विषय नौकरों के समूह, बहुत अच्छे वफादार नौकरों के समूह नश्वर है। हाथी घोड़े रथ, अब आजकल तो हाथी घोड़े रथ नहीं है सबके घर, कहीं कहीं है, लेकिन जो है आज उसको लगा लो उपलक्षण में। उपलक्षण न्याय होता है, एक उपलक्षण न्याय का अर्थ ये होता है कि एक बात कह दी, अब उसके जैसी और भी जो बातें होती है उसको आप अपने विवेक से समझ लो। जैसे माँ ने बच्चे से कहा कि बिल्ली को मत घुसने देना घर में, अब बच्चा देखता है देखता है देखता है, अब एक कुत्ता आ जाता है, सोचता है कि माँ ने बिल्ली का मना किया था, कुत्ते को घुसने देता अंदर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो बच्चा उपलक्षण न्याय को नहीं जानता। उपलक्षण न्याय ये शब्द जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका भाव नहीं समझता वो। बिल्ली को नहीं घुसने देने का मतलब ये है कि बिल्ली जैसे और भी प्राणियों को वहां अंदर प्रवेश मत देना। बस इसी प्रकार यहां भी अपने को लगाना चाहिए कि जैसे हाथी घोड़े कह दिए तो अब हाथी घोड़े नहीं है और दूसरे हैं, वाहन हैं, तो ये सब नश्वर है। दिट्ठ पनट्ठा सव्य, देखते देखते नष्ट होने वाले हैं। इसी प्रकार और भी आगे अनित्यानुप्रेक्षा के अंतर्गत बहुत सारी गाथाएं हैं, जिस प्रकार रास्ते में चलते चलते कई लोग आमने सामने हो जाते हैं, कभी पीले स्कूटर वाला कोई मिल जाता है, अपन आगे बढ़ जाते हैं एकदम ऐसे एक क्षण के लिए देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे कितने लोग मिलते हैं और कितने लोग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बंधु जनानम संजोग, अपने बंधुजनों का जो संयोग है वो भी क्षणिक है। जैसे मुसाफिर को रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, सब बिछड़ जाते हैं, उसी प्रकार अपने जितने बंधुजन हैं, जितने रिश्तेदार लोग हैं, वो भी अभी मिले हैं और बिछड़ने वाले हैं, ये निश्चित बात है। कहते हैं कि ये कुटुंब एक पेड़ है और इस पेड़ पर अनेक दिशाओं से अनेक स्थानों से पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, फिर सब अपने अपने स्वार्थवश अपने अपने कार्यवश अपनी अपनी दिशाओं में निकल जाते हैं। इष्टोपदेश में एक श्लोक है, दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। यानी इष्ट संयोग ऐसा ही है, कुछ मेरा न तेरा पंछी रैन बसेरा, ऐसे हिंदी सूत्र भी कुछ उपयोगी सूत्र हैं, कुछ मेरा न तेरा पंछी रैन बसेरा, हो गई अनित्यानुप्रेक्षा हो गई, अन्यत्व भी आ गया इसमें। फिर कहते हैं कि शरीर का कितना भी पालन पोषण करूं, नाण सुगंधे ही अनेक प्रकार के इत्र फूले लगाओ, खूब अलग अलग प्रकार के साबुनों से स्नान करो, उपटन लेपन कुछ भी करते रहो, और विविध भक्खे ही अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन करके शरीर का पोषण भी कर लो, तो भी क्षण में तीर्ण विहड़ ही एक क्षण में ये शरीर विघटित हो जाता है। 70 साल के शरीर को कितना समय लगता है भस्म होने में, मरघट में जब शरीर जलता है तो जितने सालों का था वो उतने सालों में जलता है, नष्ट हो जाता है, क्षणिक है, नश्वर है। इसलिए इस पर भरोसा मत करो, कच्चे घड़े में पानी भरने पर जिस प्रकार वो घड़ा गल जाता है और बिखर जाता है, पानी इधर उधर हो जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी है, इसका कितना भी पोषण किया जाए ये शरीर धोखा देता ही है। फिर लक्ष्मी की बात करी कि लक्ष्मी की क्या कथा है, तो आचार्य कहते हैं कि चक्रवर्ती जैसे पुण्यशालियों की लक्ष्मी भी जब नष्ट हो जाती है, शुभम चक्रवर्ती की कथा आपने सुनी हो कि वो जो शत्रु था व्यंतर, वो माली का रूप बना करके उसके पास आता है फल लेकर, और फल विक्रिया से बनाया हुआ फल था, अति स्वादिष्ट था, तो राजा रसना इंद्रिय के उस विषय में आसक्त हो जाता है। वो जब जब आता था तब राजा को फल खिलाता था, और जब राजा इंद्रिय का दास बनकर उसके वशीभूत हो जाता है तब एक दिन वो बिना फल के आता है। राजा पूछता है कि फल नहीं लाए, बोले कि आज बगीचे के मालिक ने कहा है कि तुम्हारे राजा को ही क्यों नहीं ले आते यहाँ मेरे यहाँ, तुम तो हमेशा फल ले जा करके खिलाते हो, अपने राजा को ले आओ एक बार, तो इसलिए आज उसने फल नहीं दिए हैं, आज बड़ी कृपा होगी यदि आप चलो। अब वो आसक्त तो था ही इंद्रिय विषय में, जाने लगा, मंत्रियों ने रोका कि आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, अनजान मनुष्य के साथ जाना उचित नहीं है। चक्रवर्ती कहता है कि ये तो जाना पहचाना है, बोले नहीं, ये अभी कुछ ही दिनों से आया है, अपन विश्वास नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति पर, नीति कहती है कि ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करो, लेकिन राजा ने किसी की एक नहीं सुनी और निकल पड़ा। अब जब साथ में और भी लोग चलने लगे तब फिर वो बोलता है कि इनको लौटा दीजिए, क्योंकि उस मालिक ने अकेले आपको आमंत्रण दिया है। तब चक्रवर्ती बोलता है कि चक्रवर्ती अकेले थोड़ी जाता है, उसके साथ कोई ना कोई तो सेवक रहते ही हैं, बोले कि लेकिन अब फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं चलना है तो मत चलिए, बोले। लेकिन अब वो आसक्त था उसमें रस में, बोले कि नहीं नहीं मैं चलता हूँ, बोले इनको लौटा दूंगा, लौटा दिया उनको, और वो सब भरे मन से। और जैसे ही लौटा है, देखिए वहां पर ये बात घटित होती है, चक्रहराणम पे पुण्यवंताणम लच्छी न सासया, उनका चक्र रत्न गायब हो गया, उनकी नौ निधियां वहां से गायब हो गई, और जो चक्रवर्ती का ठाट होता है वो सब विलीन हो गया। उनके पुत्रों ने समझ लिया कि अब पिता कभी लौट कर वापस नहीं आने वाले, और वास्तव में लौट कर वापस नहीं आए। वो उनको समुद्र में ले गया, एक नौका में बैठा करके बहुत दूर तक चला गया, और उसके बाद चक्रवर्ती लहरों की शोभा देख रहा है, ये अट्टहास करने लग जाता है, जैसे फिल्मों में आपने राक्षसों को हंसते हुए सुना होगा, वैसा अट्टहास करता है। चक्रवर्ती बोलता है कि क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो माली? वो कहता है कि जरा पीछे मुड़ करके देखो मैं कौन हूं। पीछे मुड़ करके देखता है तो वहां माली तो था नहीं, फल लाने वाला नहीं था वहां पर। वहां पर चक्रवर्ती देखता है कि ये तो वो रसोईया है जिसने मुझे गरम गरम रसायना नाम की कढ़ी परोसी थी, और जैसे उस कढ़ी को मैंने मुंह में डाला था मेरा मुंह जलने लगा था, बहुत गर्म थी वो कढ़ी। तब मुझे क्रोध आ गया था और क्रोध में मैंने उस बर्तन पर एक हाथ मार दिया था। वो बर्तन उचट कर सीधा इसके मस्तक से टकराया था और फिर पूरी गरम गरम कढ़ी इसके शरीर पर फैल गई थी। ये झुलस गया था और उस बर्तन की टक्कर से ये कंठगत प्राण हो गया था, मरणासन्न हो गया था, और उस वेदना में छटपटाते हुए मरकर फिर कभी वो मुझे मिला नहीं था। वो व्यंतर कहता है कि राजन, मैं वही रसोईया हूं जिस पर आपने कुपित होकर मेरी जान ले ली थी। आज बोलो बचकर कहां जाओगे, मैं बदला लेने आया हूं। अब सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं, चक्रवर्ती से अधिक शक्ति देवताओं में होती मनुष्यों से। उसने चक्रवर्ती का मुकुट तो ऐसे एक ठोकर से कहीं पानी में फेंक दिया और उसके केश पकड़कर उसको पानी में डुबा दिया चक्रवर्ती को। और जब चक्रवर्ती काफी देर तक सांस रोकने के बाद छटपटाने लगा, तब बाहर निकलने के बाद ऐसे निकालता है खींच करके और पूछता है कि मैं जो कहूंगा करने को तैयार हो? चक्रवर्ती एकदम हांफ रहा था, बोले कि क्या चाहते हो? वो कहता है कि पानी पर नमोकार मंत्र लिखना पड़ेगा तुम्हें और पैर से मिटाना पड़ेगा। चक्रवर्ती जानता था कि नमोकार मंत्र की अपार महिमा है और ऐसी अभिनय का फल बहुत भीषण होगा, इसलिए ये कार्य तो करना उचित नहीं रहेगा। ऐसे सिर करता है चक्रवर्ती, वो फिर से उसको पानी में डुबा देता है, टॉर्चर करता है, मतलब उसको यातनाएं देता है। और जब चक्रवर्ती फिर छटपटाने लगता है तब बाहर निकाल करके धीरे से पूछता है, क्या विचार किया? लक्ष्मी किसी से प्रेम नहीं करती, इसके आगे कहते हैं ता भुंजि जौ लच्छी दिच्चौ दाणे दया पहाणेन जा जल तरंग चवला दो तीन दिनाई चिट्ठी। ता माने तब तक, लच्छी भुंजी चौ, लक्ष्मी का उपभोग कर लो, और ता तब तक दाणे दिच्छौ दान दे लो, दया पहाणेन, दया है प्रधान जिसमें। ऐसे मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि ये काम तब तक कर लो जा जब तक जल तरंग चवला, जल की तरंग के समान यानी पानी की लहर के समान चंचल लच्छी दो तीन दिन आई चिक, दो तीन दिन जब तक ठहरी हुई है तब तक इतना काम कर लो। दो तीन दिन आई माने दो तीन दिन की मेहमान है लक्ष्मी, तो जब तक है तब तक उसका उपयोग कर लो, या तो भोग लो या दान दे लो। जो पुण्य लच्छिन संचरी नय भुंजदि नीय देदि पत्तेसु सो अपानं वंजदि मण्वयत्तं निफलन्तस। पुण और जो लक्ष्म संचयदि, जो लक्ष्मी का संचय तो करता है, पैसे इकट्ठा तो करता है, किंतु न भुंजदि नहीं है पत्ते सुदीदी, न उसका भोग करता है और न पात्रों के लिए दान देता है। सो अपान मंचदि, वो अपने आप को ठगता है, आत्मवंचना करता है। तस् मण्वयत्तम निफलम, उसकी मनुष्य पर्याय व्यर्थ है, निष्फल है। यानी लक्ष्मी का संचय करके यदि उसका उपभोग भी न करे और पात्रों में उसका वितरण भी न करे, सत्पात्रों को दान भी न दे, तो अपने आप को ही ठगना हुआ और मनुष्य पर्याय व्यर्थ हो गई। जो संची ऊन लक्ष्म धरणीयले संठवेदि ऐदूरे सोपुरिसोतं लक्ष्म पाहाण समाणियं कुणदि। जो लक्ष्म संचयुन, जो लक्ष्मी का संचय करके ऐ दूरे धरणी अले संठवेदी, बहुत गहरे धरती में उसको गाड़ देता है। लक्ष्मी को इकट्ठा करके बहुत दूर नीचे जमीन में धरणी तले संठवेदी उसको रख देता है, गाड़ देता है। तम लक्ष्म, उस लक्ष्मी को सो पुरुषो, वह पुरुष पाहाण समाणियम कुणदी, पाषाण के समान बना देता है। माने जैसे धरती के नीचे पड़े हुए पत्थर किसी काम के नहीं है, उसी प्रकार उसने लक्ष्मी को भी इकट्ठा करके जमीन में गाड़ दिया, वो किसी काम की नहीं रहेगी। अनवरयम जो संचरी लक्ष्म नय देदी नेय भुंजेदी अपणिया वियलच्छी पर लक्ष्य समाणिया तस। जो अनवरयम लक्ष्म संचरी, जो अनवरत अर्थात निरंतर लक्ष्मी का संचय करता है, पैसे इकट्ठा करता है, न दे दी नहीं भुंजी दी, न दान करता है न भोग करता है, तस उसकी लच्छी, उसकी जो लक्ष्मी है वह अपणिया भी है, अपनी होते हुए भी पर लच्छी समाणिया, दूसरे की लक्ष्मी के समान है। क्योंकि भोग ही नहीं रहा वो और दे भी नहीं रहा, तो फिर वो लक्ष्मी है अपनी, लेकिन फिर भी दूसरे की लक्ष्मी के समान। जिस प्रकार दूसरे की लक्ष्मी को भोग नहीं सकता कोई, जिस प्रकार दूसरे की लक्ष्मी का दान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अपनी लक्ष्मी का जो भोग और दान नहीं करता, उसकी लक्ष्मी भी पराई लक्ष्मी के समान ही है। लच्छी संसत्त मणो जो अपानं धरेदि कठेण सूरायदायणम कज्जन साहेदि मूढप्पा। लक्षी संसक्त मणु, लक्ष्मी में संसक्त यानी आसक्त है मन जिसका, ऐसा जो जो भी मनुष्य है वह अपाणम कठेदी कठेण धरेदी, अपने आप को बड़े कष्ट पूर्वक धारण करता है, मतलब लक्ष्मी में आसक्त मन होकर भी जो अपने आप को बड़ी कठिनाई से धारण करता है। सुराई दाई आणम, वो राई माने राजा जन और दाई माने दायक जन, दाया दादी मतलब अपने जन, वो उनके कज्जम साहेदी मूढ़प्पा, वह मूर्ख लक्ष्मी में आसक्त मन होकर के अपने आप को बड़े कष्ट से, मतलब खूब लक्ष्मी है, खूब आसक्ति है उसकी लक्ष्मी के प्रति और कंजूस बना हुआ है, घी पी सकता है लेकिन बिना चुपड़ी रोटी खाता है, मतलब इतनी लक्ष्मी है उसके पास। तो फिर वो क्या, उसका परिणाम क्या है? तो अच्छा, यहाँ भी इसको निदर्शन अलंकार कहते हैं। निदर्शन माने जो ऐसा करता है वो मानो ऐसा करता है, कैसा कि वो राजाओं के काम को और अपने रिश्तेदारों के काम को सिद्ध करता है, मतलब अब उन्हीं के काम आने वाली है लक्ष्मी, इतनी मेहनत करके उसने जो लक्ष्मी इकट्ठा की, लेकिन आसक्ति इतनी ज्यादा है कि वो खर्च नहीं करना चाहता, कंजूस है, कृपण है, तो उसकी लक्ष्मी किनको मिलने वाली है? राजा को मिल जाएगी या फिर दाया दादी मतलब अपने जो बाकी जो क्या बोलते हैं उसको, आगे आने वाले जो कुटुंबी जन है उनको मिल जाएगी, खुद उसके कोई काम नहीं आने वाली। कितना दृष्टांत दे दे करके समझा है मैंने, इस अनुत्यानुप्रेक्षा का चिंतन करके गृहस्थ के अंदर भी भावना हो जाए कि भाई ये लक्ष्मी 4 दिनों की है, चंचल है, तो अभी जब तक है तब तक या तो दान कर लो या फिर उपभोग कर लो। कृपणेन समोदाता न भूतो न भविष्यति, कंजूस जैसा दानी न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। क्यों? तो बोले कि वो एक पाई भी खर्च किए बिना मरते समय दुनिया के लिए सब छोड़ के चला जाता है। क्या सुना कि नहीं आपने? क्योंकि कभी कभी आप बिल्कुल दूसरा चैनल चालू हो जाता है आपका। क्या कहा? कंजूस से बड़ा दाता न हुआ न होगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ भी खर्च किए बिना जितनी संपत्ति है उसमें से जरा भी खर्च नहीं करता, पूरी की पूरी छोड़ जाता है मरते समय। इतना विचित्र दाता है। देखो, जो वड्ढारदि लक्ष्मी बहुविह बुद्धिहीनेति पेदी सवारंभं कुव्वदि रत्तिदिनं तं पिचिन्ते नय भुञ्जति वेलाये चिन्तावत्थोण सुवधिरय नीये सुदासत्तं कुव्वदि विमोहितो लच्छितरुणीये। अब फिर दृष्टांत दे रहे हो निदर्शन अलंकार से कि जो बहुविह बुद्धि ही अनेक प्रकार की चतुराई से लक्ष्मी वड्ढारे लक्ष्मी की वृद्धि करता है, बहुत सारे गुणा भाग करके लक्ष्मी को बढ़ाता है, नेय तिप्पे दी लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाता, लक्ष्मी बढ़ती जा रही है पर संतोष घटता जा रहा है, सवारंभम कुव्वदि और सब प्रकार के आरंभ करता है वो, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प आदि सब प्रकार के कमाई के जितने साधन है। आरंभ का मतलब क्या होता है? आरंभ के 2 भेद होते हैं, महारंभ और गृहारंभ। महारंभ में जितने कमाई के साधन होते हैं वो आते हैं और गृहारंभ में भोजन आदि की जो तैयारियां होती है अथवा घर गृहस्थी के जो पंच सूना संबंधी कार्य होते हैं उनको गृहारंभ बोलते हैं, और उद्योग धंधे व्यापार खेती किसानी आदि ये सारे जितने कार्य हैं जिनसे कमाई होती है ये महारंभ कहलाते हैं। इनको प्रमुख आरंभ भी कहा जाता है। तो ऐसे सब प्रकार के आरंभ करता है। अब उधर खेत भी है, वहां से भी सब आमदनी हो रही है, इधर मिल भी चल रही है, और फिर दूसरी जगह कहीं फैक्ट्री और चालू है, और इधर दुकान भी लगी हुई है, हर प्रकार के आरंभ कर रहा है। और रत्ति दिनम तंपि चिंतई, रात दिन बस उसमें लक्ष्मी की ही चिंता बनी हुई है, दिन रात धन वृद्धि का ही विचार चालू रहता है, चिंता होती रहती है कि कहीं छापा ना पड़ जाए, रेट, और फिर और भी अनेक प्रकार की चिंताएं होती है ना। नया भुंजदी वेला है, वेला मतलब जो भोजन की वेला है, खाने का जो समय है, उस समय वो भोजन भी नहीं कर पाता। ग्राहकी बढ़ गई तो फिर खबर भेज देता है कि आज हम थोड़ी देर से आएंगे,